आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हिमांशी भारद्वाज और आपके साथ मैं आपकी 9th क्लास की साइंस बुक को डिस्कस करती हूँ। सो आज इस ऑडियो में हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का 4th पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सेल ऑर्गेनेल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक है आपका 5.2.5 सेल ऑर्गेनेल्स। हम कॉम्पोनेंट्स पढ़ रहे हैं कि सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट ऑडियो में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक लार्ज नेटवर्क है ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, ट्यूब्स या फिर शीट्स का, जो कि लंबी लंबी ट्यूब्स या फिर ओब्लॉन्ग बैग जैसा, वेसिकल्स जैसा नजर आता है। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये याद रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो सिमिलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दो तरीके के ईआर होते हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER और SER। RER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा गया है क्योंकि उस पे कुछ रफ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है, और ये राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और इनको बाद में ER के द्वारा जहां पर जरूरत है उन पार्ट्स में भेज दिया जाता है। SER क्या है? द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। जहां पर एक तरफ ER रफ है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो रहा है, वहीं पर SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फैट मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पर फैट मॉलिक्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि सेल फंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। कुछ जो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। प्लीज अंडरलाइन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। कुछ अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं जो कि एंजाइम्स और हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज कराने में मदद करते हैं। ऑल्दो द ER varies greatly in appearance in different cells। जो ER है वो अलग अलग सेल्स के अंदर appearance में अलग अलग होता है। It always forms a network system। हमेशा एक network system में ही ये present होता है, ये इसकी खासियत है, इसका characteristic है कि जहां पर भी present होगा एक network form में present होगा। Now look at the figure 5.5। An animal cell is being represented। आपको एक एनिमल सेल का फिगर दिया है, आप अगर उसे देखें तो एनिमल सेल के अंदर फ्रॉम आउटर टू इनवर्ड्स अगर आप आएंगे तो आपको पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स दिखाई देंगे, देन आपको गॉल्जी अपरेटस दिखाई देगा, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, बिग न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको ये सभी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे और इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम वन बाय वन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Thus, one function of ER is to serve as channels for the transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। So, जो एक फंक्शन है ER का वो ये है कि ये चैनल्स की तरह काम करता है मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, सबसे ज्यादा स्पेशली प्रोटीन्स के लिए, from various regions of cytoplasm or between cytoplasm and nucleus। ER also function as cytoplasmic framework providing a surface। ER एक cytoplasmic network की तरह भी काम करता है जो कि surface provide करती है for some of the biochemical activities of the cell। cells की biochemical activities को ER surface provide करता है। In the liver cells of the group of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। कुछ एनिमल सेल्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर स्पेसिफिकली जो कि वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, SER एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाई करने में कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस को, कुछ ड्रग्स को, जिसके बारे में आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे. नाउ लुक एट फिगर 5.6. अ प्लांट सेल इज बीइंग रिप्रेजेंटेटेड. आप देखेंगे आपको एक प्लांट सेल दिया है और प्लीज आप डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश कीजिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में स्ट्रक्चर लेवल पे आपको क्या डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं. सो इन अ प्लांट सेल यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद लाइसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी अपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट सेल वॉल. सो प्लीज मार्क दिस पॉइंट, एडजेसेंट सेल वॉल. अ सेल वॉल इज बीइंग एब्सेंट इन एनिमल सेल. सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं है जबकि प्लांट सेल के अंदर है. बाकी सभी पार्ट एनिमल सेल के अंदर भी पाए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज गॉल्जी अपरेटस. 5.2.5 गॉल्जी अपरेटस. द गॉल्जी अपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गॉल्जी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टम्स. सो गॉल्जी अपरेटस की डिस्कवरी सबसे पहले की थी कैमिलो गॉल्जी ने, जिन्होंने बताया कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के ग्रुप से मिलकर बने हैं जो कि अरेंज्ड हैं पैरेलली अरेंज्ड हैं और स्टैक्स ऑफ सिस्टर्न्स की तरह ये लगे हुए हैं और इन्हें सिस्टर्न्स कहा जाता है. स्टैक्स यानी जैसे सिक्कों का स्टैक लगा देते हैं हम, कुछ उसी तरीके से लगे होते हैं जिसे सिस्टर्न्स कहा जाता है. These membranes often have connections with the membrane of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये जो membranes हैं, connections जो हैं membrane of ER और अलग दूसरे membranes के बीच में, इनको complex cellular membrane system कहा जाता है. The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. और जो material synthesize हो रहे हैं ER के अंदर, वो package होते हैं और dispatch होते हैं to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus. ठीक है? Its function include the storage, modification and packaging of products in vesicles. इसका जो main function है वो है storage, modification, packaging प्रोडक्ट्स का वेसिकल्स के अंदर. प्लीज अंडरलाइन. इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गॉल्जी अपरेटस. कुछ केसेस के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाई जाती है, सिंपल शुगर भी बनाई जाती है गॉल्जी अपरेटस के द्वारा. द गॉल्जी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. गॉल्जी अपरेटस एक काम और करता है कि ये लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि लाइसोसोम्स क्या है. बिफोर गोइंग टू लाइसोसोम्स लेट अस रीड अबाउट कैमिलो गॉल्जी. कैमिलो गॉल्जी के बारे में पढ़ते हैं. कैमिलो गॉल्जी वॉज बॉर्न एट कॉटिनो नियर ब्रेसिका इन 1843. कैमिलो गॉल्जी का जन्म हुआ कॉटिनो में, ब्रेसिका के पास 1843 में. ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया. उन्होंने मेडिसिन यानी डॉक्टरी की पढ़ाई की पेविया से. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of Saint Matthew. अपनी graduation 1865 में पूरी करने के बाद उन्होंने काम करना शुरू किया एक Pavia के hospital में जिसका नाम था Saint Matthew. At the time, most of his investigations were concerned with the nervous system. जिस समय वो वहां पर ड्यूटी कर रहे थे उनकी investigations ज्यादातर नर्वस सिस्टम की diseases या उसके complications से related हुआ करती थी. In 1872, he accepted the post of chief medical officer at the hospital for the chronically sick at AB Chiagrasso. AB Chiagrasso नाम की एक जगह में वो medical officer हो गए, chief medical यानी CMO हो गए, जिन्होंने chronically sick patients को देखना शुरू किया. He first started his investigations into the nervous system in a little kitchen of this hospital. सबसे पहले उन्होंने investigations को करना शुरू करा nervous system के एक छोटे से kitchen में जो कि hospital में थी, which he had converted into a laboratory. उन्होंने उस kitchen को एक laboratory में बदल दिया था, तब्दील कर दिया था. However, The work of greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structures. सबसे जो revolutionary method था उनका वो ये था कि वो materials को रंग के देखते थे, यानी उनका staining करते थे individually nerve cells का और cell structures का, और बाद में उनको वो investigate करते थे. This method is referred to as the black reaction. इस मेथड को नाम दिया गया ब्लैक रिएक्शन. दिस मेथड यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रैमिफिकेशंस ऑफ सेल. इस मेथड को वीक सॉल्यूशन कहा गया, ब्लैक रिएक्शन कहा गया, क्योंकि इसके अंदर एक वीक सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, और वो ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता था मोस्ट डेलिकेट ramifications को जो कि cells के अंदर थे. All through his life he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इस टेक्निक को मॉडिफाई और इम्प्रूव करने में ही लगा दिया. Golgi received the highest honors and awards in recognition of his work. उन्हें अपने काम के लिए काफी सारे honors और काफी सारे awards मिले. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramón y Cajal for their work on the structure of the nervous system. उन्हें 1906 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, जिन्होंने उनसे शेयर किया सेंटियागो रेमोन के साथ. दोनों ने मिलकर नर्वस सिस्टम के ऊपर काम किया था. सो ये थे साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा. नाउ अब हमें अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पढ़ना है, लाइसोसोम्स. सो लाइसोसोम्स के बारे में अभी आया था कि लाइसोसोम सिंथेसाइज होते हैं गोल्जी अपरेटस के द्वारा. सो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. 5.2.5 लाइसोसोम्स, पेज नंबर 64. लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. लाइसोसोम एक प्रकार का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल. लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Lysosomes क्या करते हैं, सेल को साफ रखने में मदद करते हैं, क्योंकि ये कोई भी foreign material जो आता है सेल के अंदर उसको digest कर लेते हैं, as well as उसको cell organelles के साथ साथ cell organelles से बाहर निकाल देते हैं. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosomes, which break them up into small pieces. Lysosomes के अंदर foreign materials जो cells के अंदर आए हैं वो कोई bacteria या कोई food material जो भी है वो destroy होकर lysosome में ही खत्म होता है, और lysosomes में जाने के बाद वो breakdown हो जाता है. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. लाइसोसोम इसको इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक एबिलिटी है, उनके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि इन मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्युलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम मे बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल. जब कभी भी मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आता है, सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आता है, तो क्या होता है कि सेल्स डैमेज हो जाता है, तो जो लाइसोसोम है ना वो बर्स्ट होकर एक एंजाइम का सिक्रीट करता है और उसी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है. जो सेल डैमेज हो गया है, जिस सेल का मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है, बेकार हो गया है, उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है. देयरफॉर लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल. स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. These enzymes are made by RER. So, इनको कहा जाता है suicide bag of a cell. Please underline the point. Suicide bags of the cell. आपसे यहाँ से question पूछा जाता है, why does lysosomes are called as suicide bags of cell? So, ये important है. Structurally, lysosomes membrane bound थैले जैसे हैं, जिसके अंदर digestive enzymes filled होते हैं, और ये enzymes उनको rough endoplasmic reticulum के द्वारा मिलता है. So, ये हुआ आपका lysosomes. Next, 5.2.5, fourth, mitochondria. Next cell organelle is mitochondria. Mitochondria are known as powerhouse of the cell. Please underline, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल किस लिए कहा जाता है. इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेरियस केमिकल एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो एनर्जी रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, प्लीज अंडरलाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को रिलीज करता है सो दैट सेल्स अपनी केमिकल एक्टिविटीज को कर सके. एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है. द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क. जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी को यूज करती है जो कि स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में सो दैट वो नए केमिकल कंपाउंड्स को बना सके और मैकेनिकल वर्क अपना करता रहे. माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट वन. माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, क्योंकि ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं सो इनके ऊपर किसी ना किसी मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है. सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सिंगल मेम्ब्रेनस नहीं है, वो डबल मेम्ब्रेनस है, उसके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स हैं. द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो छिद्र वाली है, पोरस है, पोर्स है उसके अंदर, जबकि जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है, मतलब वो फोल्डेड फॉर्म में है. दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस. ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट हैं ये काफी सारा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है केमिकल रिएक्शंस के. माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स हैं क्योंकि इनके पास अपना स्वयं का डीएनए है और अपने ही स्वयं के राइबोसोम्स हैं. देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स. इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने जाना कि ये पावर हाउस होता है सेल का. सेल के अंदर जितनी भी केमिकल और मैकेनिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ये एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. और एटीपी मॉलिक्यूल्स स्टोर रहते हैं, जब भी उनकी जरूरत पड़ती है उनका यूटिलाइजेशन हो जाता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो सिंगल नहीं है, डबल है. आउटर जो उसकी स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन है वो डीपली पोरस है और जो उसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है. ये जो फोल्ड्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एक बहुत ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस. और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि इसके पास अपना डीएनए है और अपनी ही राइबोसोम्स हैं जिसकी वजह से ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है. नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज 5.2.5 फिफ्थ, प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. प्लास्टिड्स आपको रिमेम्बर ये हमेशा याद रखना है कि प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स. दो प्रकार के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, पहला क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट है या फिर कलरलेस है. तो पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये कि प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स के अंदर है. दूसरा, प्लास्टिड्स टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. जो प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है. क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. यू मे नो दैट कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट है. मीन्स जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट है ग्रीन कलर का जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो
और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तीन और पिगमेंट्स पाई जाती हैं, लाइक येलो पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, अभी हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है। ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरीली ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर ये मटेरियल्स लाइक स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स स्टोर होते हैं। याद रखना ये दोनों ही पार्ट्स केवल और केवल प्लांट्स के अंदर है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन अगर प्लास्टिड्स का देखा जाए तो इसके अंदर न्यूमरस मेम्ब्रेनस लेयर्स हैं जो कि एक के ऊपर एक घसे हुए हैं और उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा उसे कहा जाता है। प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्लास्टिड का और माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिमिलर है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है, उसी तरीके से प्लास्टिड्स के पास भी ये दोनों चीजें होती हैं। सो ये हुआ आपका प्लास्टिड्स। नेक्स्ट इज 5.2.5 वैक्यूल्स। अब हमें पढ़ना है वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ये स्टोरेज बैग्स हैं या थैले जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स स्टोर होते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स का साइज काफी छोटा होता है जबकि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है। आप फिगर देखकर इस चीज को देख सकते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। कभी कभी देखा गया है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल है वो उसका जो सेल वॉल्यूम है उसका 50-90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, इतना बड़ा होता है प्लांट सेल के अंदर। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide sturdity and rigidity to the cell. Plant cells के अंदर जो ये vacuoles हैं, ये cell sap से भरे होते हैं। इसके अलावा ये turgidity और rigidity provide करते हैं। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in the vacuoles. Plant cells के अंदर जो काफी सारे life को maintain करने के लिए substances हैं, जो vital हैं, वो उस वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर सेल सैप होता है जो कि क्या करता है, उसे टाइटनेस प्रोवाइड करता है वैक्यूल। दीज इंक्लूड अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। सो ये जो इंपॉर्टेंट या वाइटल सब्सटेंसेस हैं वो हो सकते हैं अमीनो एसिड, शुगर और कुछ और ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स। In single-celled organisms like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. जैसे कि कुछ single-celled organism है, amoeba है, उसके अंदर जो food vacuole present है, वो क्या करता है? Food items को store कर लेता है जिसे amoeba ने consume किया, जिसका भक्षण किया amoeba ने, वो उसके अंदर store हो जाता है. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. कुछ unicellular organisms के अंदर ये जो vacuoles हैं ये specialized होती हैं और काफी important role play करती हैं excess water को बाहर निकालने में या waste materials को बाहर निकालने। So ये हुआ आपका vacuoles. Now here are some questions given on page number 65. Questions को हम discuss कर लेते हैं। First question: Can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? So, क्या आप दो ऐसे organelles का नाम दे सकते हैं जिसके पास अपना खुद का genetic material? So, what is genetic material? DNA is the genetic material. So, ऐसे कौन से दो cell organelles हैं? पहला है mitochondria, दूसरा है plastids. So, plastids और mitochondria दोनों के पास अपना genetic material होता है. Second, If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर किसी सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया है किसी फिजिकल या केमिकल कारणवश, तब क्या होगा? So, the answer will be, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, then cell will not be able to perform the basic functions like respiration, nutrition, excretion, etc. This may stop all the life activities and may result in its death. So, the answer is quite simple. अगर सेल को किसी भी प्रकार से उसका डिस्ट्रक्शन होगा या उसके बीच को उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस होगा, तब क्या होगा कि उसकी जो बेसिक फंक्शंस हैं, लाइक रेस्पिरेशन करता है, न्यूट्रिशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, वो सभी डिस्टर्ब हो जाएंगी और इन द एंड क्या होगा, वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी. Why are lysosomes known as suicide bags? So, lysosomes को suicide bags क्यों कहा जाता है? Lysosomes are called suicide bags because in case of disturbance of their cellular metabolism, they digest their own cell by releasing own enzymes. Lysosomes को suicide bag क्यों कहा जाता है? मैंने आपको underline कराया था क्योंकि कभी ऐसा हो अगर cell के अंदर कुछ disturbances आ जाएं, उसके metabolism में disturbance आ जाएं, तो क्या होगा, वो कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेगा और उसी सेल को खुद इंजेस्ट कर जाएगा, बर्स्ट होगा और उसी सेल को पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? सेल के अंदर प्रोटीन्स का सिंथेसिस कहां पर होता है? सो हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक राइबोसोम नाम का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है. सो द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम इनसाइड द सेल. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ गिवन ऑन पेज नंबर 65. ईच सेल डज एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शंस बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वेज. जितने भी सेल्स हैं वो अपना स्ट्रक्चर और अपनी एबिलिटी के लिए के हिसाब से अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, अपना मेम्ब्रेन हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए और स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. द सेल दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसी कारण से सेल का अपना बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है. दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन and clearing of waste material. इन्हीं basic structural organization की वजह से क्या होता है कि cell इन functions को कर पाता है, like respiration कर पाता है, CO2 को release करता है, O2 को receive करता है, nutrition obtain करता है, waste materials को eliminate करता है and forming new proteins और new proteins का formation करता है. Thus, the cell is the fundamental structural unit of living organisms. It is also the basic functional unit of life. इसी कारण से सेल को, क्योंकि सेल ही सारे फंक्शंस को कंप्लीट करता है, वही सारे फंक्शंस को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है, इसी कारण से उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कही गई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. इट इज ऑल्सो द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमारे लाइफ का बेसिक फंडामेंटल यूनिट भी है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. सो वी आर नाउ डन विद द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यही है कि आपको सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पता होना चाहिए और आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल, क्योंकि ये डिफरेंस आपसे अभी एक्सरसाइजेस में भी पूछा जाएगा. इसके अलावा जैसे कुछ कॉमन टर्म्स आए हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स कहा गया है, आरईआर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर राइबोसोम है इस वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, लिपिड्स का सिंथेसिस होता है. तो आपको विद फंक्शन उन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को याद रखना है इसके अलावा आपको डायग्राम आना चाहिए एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, क्योंकि कई बार ये डायग्राम भी ड्रॉ करने को आता है। सो ये आपका हुआ चैप्टर 5। नेक्स्ट ऑडियो में हम आपके एक्सरसाइज पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।